ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಳೆ ಶ್ರೀಮದೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. आज दही चूड़ा उत्सव और साथ साथ में द्वादशी भी है. कल मेघल एकादशी सब भक्तों को देखी है. तो प्रभुपाद जी की कृपा से वैष्णवों की कृपा से कैसे कैसे करके एकादशी व्रत पालन कर लिए. एकदम से शास्त्रों में बताया गया और नियमों को तो कड़ाई से पालन नहीं कर पाए हम, मगर कम से कम उपवास तो रह लिए दूसरे दिन तक. जैसे मैं बताया था कि द्वादशी के दिन एक बार खाना, एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं सोना, दशमी के दिन द्वादशी के दिन एक ही बार खाना, नहीं हो पाए, मगर उपवास तो कर लिए, बाकी सोना वगैरह नहीं हो पाए. ये दही चूड़ा उत्सव कभी कभी त्रयोदशी में आता है और कभी कभी ये द्वादशी के दिन भी आ जाता है. गौड़ीय वैष्णवों का ये एक उत्सव है, बहुत सुंदर दही चूड़ा उत्सव. आज के दिन सभी विश्व भर में सभी इस्कॉन की केंद्रों में दही और चूड़ा खाते रहेंगे और उसके बारे में गुणगान करते रहेंगे दही चूड़ा के बारे में. उद्देश्य क्या है ये दही चूड़ा उत्सव का या इसके पीछे थीम? नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते और नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य प्रभु की कृपा के बिना, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता. राधा कृष्ण के प्रेम चाहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम चाहिए तो नित्यानंद प्रभु का प्रेम या कृपा होना जरूरी है. एक ये है. दूसरा, आप सब सुने रहेंगे, हम सब हमारे अंदर अनर्थ रहते हैं, अनर्थ. उन अनर्थों को भगवान खत्म नहीं करते हैं, उन अनर्थों को गुरु खत्म करते हैं. तो जब तक हमारे हृदय में से अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाता है, अनर्थ का सफाई नहीं हो जाता है, तब तक हमें कृष्ण प्रेम या श्री भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करते. तो ये अनर्थों को खत्म करने का एक जिम्मेदारी है गुरु जी का, गुरु तत्व का. ये दही चूड़ा उत्सव इसके ऊपर, इस थीम या ये विषय के ऊपर आधारित है. आप सब सुने रहेंगे, हमारे छह गोस्वामी हैं, है कि ना? तो ये छह गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए मूल है और उसमें से मुख्य थे श्री रूप गोस्वामी. और हम सबको रूपानुभव कहते हैं. रूपानुभव क्यों कहते हैं? श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथों के आधार पर हम अपना राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए अनुगमन कर रहे हैं रूप गोस्वामी के अनुसार, इसलिए हमको रूप अनुगम कहा जाता है. तो हमारे संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद छह बहुत ऊंचे कोटि के गोस्वामी हो चुके हैं. कई गोस्वामी हुए हैं मगर छह गोस्वामी मुख्य है, सर्व गोस्वामी के रूप में परिचित है. अलग अलग संप्रदाय में गोस्वामी होते हैं. श्री संप्रदाय में गोस्वामी है 12 गोस्वामी हो चुके हैं. उन 12 गोस्वामी को लोग गोस्वामी नहीं कहते हैं, हलवार कहते हैं ना. हमारे संप्रदाय में हम गोस्वामी कहते हैं. भागवत में 12 महाजन हो चुके हैं ना? महाजन ठीक वैसे है, 12 महाजन तो हमारे लिए है ही, मगर साथ साथ में हम गौड़ी वैष्णव के लिए 6 गोस्वामी बहुत मुख्य रोल अदा करते हैं. इन 6 गोस्वामियों के बीच में एक गोस्वामी हुए जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, वैराग्य शिरोमणि, वैसे सभी गोस्वामी वैराग्य थे, फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का चर्चा बहुत हुआ करता है वैष्णवों में, ग्रंथों में रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो हम सबको, हमारा हम सबका कर्तव्य है कि हमारे आचार्यों के बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए, थोड़ा बहुत श्रील प्रभुपाद जी के प्रति तो अपना प्रेम है सबका, क्योंकि सब जगह प्रभुपाद 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 सुन रहे हैं, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सब मना रहे हैं, किताबें उनके पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि प्रभुपाद होते तो कितना अच्छा रहता, भक्तों से बातें करते हैं आपस में, कभी ऐसा लगा भक्ति विनोद ठाकुर होते भक्ति सिद्धांत होते तो क्या उनका विरह श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले जो पार्षद हैं मुख्यतः तो सर्व सब है रूप गोस्वामी का विरह उतना नहीं लगा जितना प्रभुपाद के प्रति लग रहा है ना, लगना चाहिए। कैसे मालूम है, हम उनके बारे में ज्यादा सुनेंगे तब। अपना वापी का सिनारियो कैसा है, पिछले 6-7 सालों से जो भी थोड़ा मोड़ा प्रचार चल रहा है, हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई प्रभु जी आते थे यहाँ पे, और वो आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आएंगे, भगवत गीता में से थोड़ा बताएंगे और लोगों के थोड़ा समस्याओं को सुनेंगे और थोड़ा बहुत कुछ अगड़म बगड़म करके फिर हफ्ते भर खाली आएंगे, पूछेंगे जब किया क्या सोलह माला बताए वैसा सब लोग करते हैं, फिर वही गीता सुनेंगे। तो गीता में कम से कम प्रभुपाद जी का बात तो बार बार आएगा, प्रभुपाद जी ने बोला प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी के प्रति हमारा श्रद्धा उतना होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी उनके किताबों में प्रस्तुत किया ये सब कुछ श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी बताया। हाँ, वो आचार्य है, इसलिए उन सिद्धांतों को हमारे भेजे में घुसने जैसे शब्दों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए मगर वो सर्व गोस्वामी के ग्रंथों के सिद्धांतों को ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमारा थोड़ा सा लगाव लग रहा है, ठीक वैसे अन्य आचार्यों के प्रति भी लगना चाहिए। मैं मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा भावनाओं को, 2.5 साल से यहां आने के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं उन लोगों को अच्छे से नहीं जानता हूं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अलग अलग आचार्य, क्योंकि जब बड़े मंदिर में रहते थे हम मीरा रोड में, तो कोई भी आचार्य को कुछ भी हुआ उस दिन भागवत क्लास में उसी के बारे में चर्चा, और मुख्य कोई आचार्य हुए तो उनका फोटो रखते, उनके श्रद्धांजलि, उनके पुष्पांजलि, उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन, जय जय जगन्नाथ बलदेव नारायण, तो उनका ग्लोरिफिकेशन हुआ तो उनके बारे में सुनते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज तो हमेशा भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में बहुत सोचते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज जो ना वो फिलोसफी को बताने में एकदम से सिंह गुरु, भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ीय वैष्णवों को गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्राण थे वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय एकदम से बस मिट्टी में मिलने जैसे परिस्थिति में था, क्योंकि सब अपसंप्रदाय शुरू हो चुका था, मगर भक्ति विनोद ठाकुर ने सबको इकट्ठा किया, चैतन्य चरितामृत जिसको आप पढ़ के समझे उसको इकट्ठा किया, ये सब सुनता था हम मीरा रोड में रहते तो लगता था वो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति शास्त्री हम पढ़ने के लिए गए थे रूप गोस्वामी के बारे में बहुत लगता था, प्रतिदिन आता था रूप गोस्वामी भक्ति रसानंद सिंह ने ऐसे बताया, प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे ट्रांसलेट किया, रूप गोस्वामी ईश्वर ने उपदेशानंद में ऐसे बताया, तो हमको लगता था रूप गोस्वामी तो उनके साथ का संबंध है मेरा ऐसा लग रहा। मगर 2-2.5 साल जी यहाँ रहने के बाद मुझे ऐसा एकदम से फीलिंग होने लगा था, अरे मुझे पता कभी तो फर्स्ट पहले 1 साल तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सा आचार्य का कभी तो तिथि होता है, मैं उतना उधर ध्यान नहीं रहता, वही हफ्ते में एक दो प्रोग्राम गीता बताओ और कुछ इधर उधर भागो वही लग जाता, फिर धीरे धीरे से अभी ऐसा लगने लगा कि उधर से लेके पिछले कुछ महीनों से सभी चीजों को सही से पालन कर, हम लोगों को लगना चाहिए हमारे आचार्यों के प्रति हमारा लगाव हमारा प्रेम कब होगा, उनके बारे में सुनेंगे भक्तों से, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके उत्सवों को मनाएंगे, उनके तिरुभाव में उनका गुणगान, उनके आविर्भाव में उनके गुणगान करेंगे तभी हमारा आचरण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव धारा के अंतर्गत हम भक्ति कर रहे हैं राधा कृष्ण की उपासना, तो हमारा ड्यूटी है कि हमारे संप्रदाय के आचार्यों के बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए, उनके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। हम एक उदाहरण बता रहे थे, जैसे एक पत्नी को अपने पति के प्रति ही उनका प्रेम ज्यादा होना चाहिए, दूसरे पुरुषों को तो रेस्पेक्ट देगी सही है, मगर उनके पति के प्रति का जो रेस्पेक्टनेस है, प्रेम है, उनकी सेवा है, वैसे एक डिसाइपल को अपने गुरु और अपने गुरु परंपरा के प्रति वैसे होना चाहिए। अगर उतना प्रेम नहीं रहेगा तो हम कभी भी डिविएट हो सकते हैं, कभी भी हम किसी भी चीज को अच्छा लग सकता है। हम कई जगहों पे कथा सुनेंगे, कभी कभी सुनते हैं, पहली बात तो सुनना नहीं चाहिए, किसी के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए, केवल हमारे आचार्यों के मुख से सुनना चाहिए, हमारे परंपरा से आचार्यों से बोला हुआ व्यक्ति जो बोलते हैं उनसे सुनना चाहिए। भले ही वो परफेक्ट नहीं है, मगर क्योंकि वो अपने से नहीं बोल रहा है, हमारे प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य ने जो बताया उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं, तब हमारा प्रेम हमारे आचार्यों के प्रति होगा, हमारे परंपरा के प्रति होगा। और अगर हम नहीं सुनेंगे तो कभी भी हम किसी भी चीज हमको अच्छा लग सकता है, कोई अगर वक्ता बहुत सुंदर तरीके से अगर वो गा के बोल रहा है तो हमको लग सकता है कितना अच्छा बोल रहा है, और कोई संप्रदाय वाला, दूसरा कोई संस्था वाला अगर हमको ऐसे ही थोड़ा कुछ इस्कॉन जैसा प्रोजेक्ट लगा के ये करके वो करके अगर हमको कुछ सिखाने लगेगा, हमको लगेगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी बहुत अच्छा बता रहा है, सही चीज है, हम इस्कॉन जैसा ही बता रहा है, ऐसा लगने लगेगा अपने को। नहीं, हमको कैसे एक पतिव्रता स्त्री जैसा होना चाहिए हमारे परंपरा के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति। ये तब हो पाएगा जब हमारे आचार्यों के ग्रंथों को हम ज्ञान पूर्वक सुनेंगे, उनके आविर्भाव तिरुभावों को मनाएंगे, उनके उत्सवों को मनाएंगे तब। तो ये दही चूड़ा फेस्टिवल का मैंने वो थीम तो बताया कि गुरु की कृपा के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है, नित्यानंद कृपा के, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलता, ये उद्देश्य है उत्सव का। कैसे ये फुलफिल होता है ये उद्देश्य, वो संक्षेप में सुनेंगे, है कि नहीं। इसीलिए सभी भक्तों को निवेदन है कि अभी बहुत हो गया, 5-6 साल से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अभी हमको प्रगत होना चाहिए, केवल हरे कृष्ण की जपा और उसमें नहीं, उन जपाओं का और उसका क्वालिटी क्वांटिटी सब में परे चेंजेस कैसे आएंगे, जैसे जैसे हमारे आचार्यों के बारे में हम सुनेंगे, उनकी वैराग्य की कथाओं को सुनेंगे, तभी हमारे हृदय, चाहे हम घर में रहे, चाहे हम आश्रम में रहे, कोई भी क्यों ना हो, हमारे आचार्यों की शिक्षाएं इस प्रकार से है कि वो घर में रहने वाला भी व्यक्ति, चाहे वो आश्रम में रहने वाला भी व्यक्ति, चाहे वो घूमने वाला भी व्यक्ति, उसको अपना सकता है और सही तरीके से श्री कृष्ण की ये जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हमको अभी तो चौकन्ना हो जाना चाहिए, प्रगत होना चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है कि प्रभुपाद जी के किताबों के साथ साथ प्रभुपाद जी के प्रति हमारा प्रेम के साथ साथ हमारे आचार्यों को भी हम लोगों को जानना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है हमारे वापी में भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में उतना नहीं जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को उतना नहीं सुने हैं। पिछली बार हमने प्रयास किया था कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में गौर पूर्णिमा के टाइम में, नहीं फर्स्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था उसके बाद नहीं कर पाया, क्योंकि क्या समस्या, एक ग्रुप है, वही ग्रुप है कि जब भी बुलाने से आते हैं, सेवा भी वही करेंगे, हर एक क्लास में वही रहेंगे, इसलिए कितना आ पाएंगे उस दृष्टिकोण से हमको थोड़ा विचार करना पड़ता है। काम काज भी करना, सेवा भी करना, भागना और अलग अलग क्लासेस में आना, अभी तो बहुत सारे क्लासेस हो गए, गीता संडे वो अपने अपने सोसाइटी में घरों में, फिर भी अगर हम नहीं आ पाते हैं, अभी तो मंदिर में पालन तो करना ही है, प्रवचन तो होगा ही जरूर, नहीं आ पाए थे तो अलग अलग उपाय, भक्तों से सुनो, फोन में सुनो, किताबों को खोल के पढ़ो, सबके घर में वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार प्रतिदिन उठ के व्यक्ति का कर्तव्य है कि वैष्णव कैलेंडर को पलटना चाहिए, उसको एक परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट सर्विसमैन वो क्या करता है, हमेशा कैलेंडर देखता है, उसके अनुसार वो अपडेट रहता है ना, फलाना मीटिंग, फलाना उस व्यक्ति से मिलना, उससे कलेक्शन लेना, उसको देना, वहां जाना, वहां ट्रैवल करना, सब उसका प्लानिंग रहता है, ठीक वैसा अपना वैष्णव कैलेंडर हमेशा रहना चाहिए अपने सामने कि नहीं फलाना डेट को वो आ रहा है, उसके लिए मुझे अभी से प्रिपेयर करना है, वो सेवा करना है, उस दिन के लिए मैं तैयारी करके मंदिर में जाऊंगा, ये सब अभी से हम लोग को करना चाहिए। तो आज श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, आप जो सुने हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से गोस्वामी से गोस्वामी है जिनकी वैराग्य के गुणगान सब जगह ज्यादातर चलता रहता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो बचपन से कथा सुनते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और उनके पिताजी के बड़े भाई गोवर्धन मजुमदार और दूसरा हिरण्य मजुमदार, ये दो भाई है गोवर्धन मजुमदार हिरण्य मजुमदार। तो रघुनाथ दास ये दोनों वैष्णव नहीं थे मगर धार्मिक थे, ब्राह्मण कायस्थ, कायस्थ ब्राह्मण थे, कायस्थ ब्राह्मण करके एक होता है बंगाल। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत धनाढ्य अपर्याप्त मात्रा में, मानो हो कि उनकी तुलना कुंवर के साथ कर सकते इतना मात्रा में धन प्रभु जी आप ऐसे कैसे करते हैं, कह सकते क्योंकि उनका मंथली इनकम कैसा था मालूम है, 20 लाख गोल्ड कॉइन्स ये उनका इनकम, उसमें से 12 लाख तो ऐसे टैक्स भरते थे आज, और एक्चुअली उनको 15 लाख भरना चाहिए था टैक्स या गवर्नमेंट को, उसमें से 12 भरते थे और 3 ठगते थे, 5 उनका प्रॉफिट था, तो कितना प्रॉफिट हुआ 8, 12 लाख वो भरते थे गवर्नमेंट को, 8 लाख रुपया महीने का, 8 लाख गोल्ड कॉइन्स एवरी मंथ उनका इनकम है, एवरी मंथ है ना उनका इनकम है, तो सोचो कितने धनी होंगे। उनका घर हमेशा खुला सबके लिए, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होना चाहिए जो भूखा या कष्ट में रहता, किसी भी प्रकार का थोड़ा कष्ट उनके घर में उनको खाली खबर मिलना चाहिए उनका समस्या का समाधान। बहुत रुचि ब्राह्मणों की सेवा में, वैष्णव की सेवा, वो वैष्णव नहीं थे पूरा, उन्होंने अलग अलग संतों को बुला के प्रवचन भी करते थे गांव में। तो हरिदास ठाकुर जी को बुलाए थे शुरू शुरू में, हरिदास ठाकुर श्री नामाचार्य है ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर मुसलमान थे फिर भी नामाचार्य, हरिनाम के आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था पदवी, बेचारे ब्रह्मा है मुसलमान के घर में जन्म हुए थे हरिदास के रूप में। हरिदास ठाकुर की लेक्चर्स प्रवचन ये लड़का रघुनाथ बचपन में सुना करता था डेली, तब से चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम गाढ़ हो गया, बचपन से ही गौरा गौरा गौरांग गौरांग करके वो चिल्लाते थे। जवानी में कई बार वो अपने घर से छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाने के लिए प्रयास किया, एकदम से धनी होने के कारण कई लोगों को लगा के उनके पिताजी उनको पकड़ के वापस ले आते, बार बार करने के कारण उनको नजरबंदी बना दी है। नजरबंदी समझते हैं? एक व्यक्ति रहेगा नजर में किधर जा रहा है, जाना है तो एंट्री मार के जाएगा, आएगा तो एंट्री मारेगा, कब गया किधर गया, नजरबंदी। बहुत धनी थे, कई बार भागने के लिए प्रयास किए, किसके लिए, ये जो ऐश्वर्य है ये धन है ये नाम है ये सब कुछ बेकार है, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना ये सब कुछ बेकार है, मुझे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा ही चाहिए, जानना चाहता। ये होता है भक्तों के मुख से कथा सुनने की फल। नामाचार हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति से अगर प्रवचन सुनेगा तो उस व्यक्ति का क्या होगा, मगर ऐसे भी केसेस है, क्योंकि वो बेटा बच्चा अकेला नहीं सुनता था, उसका बाप और उसका बड़े बाप भी सुनते थे, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन, उनको कुछ नहीं हुआ अरेस्ट करते थे। कई केसेस ऐसा है, नारद मुनि का प्रवचन कयाधु ने भी सुना, कुछ फर्क नहीं गया, प्रहलाद महाराज भक्त बन गए, ठीक वैसे तो इन दोनों को कुछ नहीं हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। कई बार भागने लगे तो उनको रोक दिया उनके पिताजी ने। बाद में सोचने लगे कि इस प्रकार जो लड़का कर रहा है, घर से भाग रहा है बार बार, कैसे हम इसको रखे, आगे अपना बिजनेस संभालना है, एक ही बेटा है, इतना संपत्ति है, क्या होगा अगर यही चला जाएगा साधु बन के। तो कोई भी माता पिता एकदम से तैयार नहीं होते, आप कोई कबार वो अपने बच्चे को साधु बनाने के लिए इच्छुक रहते हैं, नहीं तो बाकी नहीं, चाहे वो कितना भी भक्त हो जाए। ये गृह का, परिवार का, संतान संपत्ति के प्रति का आसक्ति इसको कहा जाता है। ये बहुत गहरा आसक्ति है, बहुत कठिन है इसको, इस आसक्ति को तोड़ पाना। तो उनके पिताजी और पत्नी दोनों, मम्मी पापा रघुनाथ दास भूषण, विचार किए बच्चे को कैसे रखा जाए। तो उन्होंने क्या उपाय है जवान लड़के को रखने के लिए, बेस्ट तरीका, शादी करा दो, मस्त सुंदर लड़की को देखे चेतन चेतन ने बताया कि अप्सरी जैसा, इतना सुंदर अप्सरी जैसा कन्या को देख के उनको विवाह करा दिए। मगर देखे कोई फर्क नहीं गिरा, पत्नियां संपत्ति है सब भोग विलास है, फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं गिरा, उनके अंदर ऐसे की वैसे बैराग्य। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु एक गांव आए थे, कौन सा केड़ी, जय श्री हनुमान परमेश्वर, राम केड़ी गांव में आए थे। वहां पे रघुनाथ दास को सब छोड़ के चले गए थे चैतन्य महाप्रभु ने, मगर चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार नहीं किए, वापस घर भेज दिए। बोले कि मरकट में रह के मत दिखाओ, घर जाओ, भक्ति करो, सेवा काम करो, घर का घर गृहस्थी चलाओ अच्छे से। दुखी होकर वापस चले गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बहुत आचार्यों ने, भक्तों ने विचार किए क्यों भेज दिए। ये जो चीजें वो देखना चाहते थे महाप्रभु, क्या सच में इतना वैराग्य है, रह पाएगा, या तो नित्यानंद का कृपा अभी तक हुआ नहीं है, मिला ही नहीं नित्यानंद से, कैसे एक्सेप्ट करूं। हो सकता है आज भक्त लोग कहते वापस ले, अभी चैतन्य महाप्रभु बोले करके वो घर में जाके मस्त अपना बिजनेस संभाले, माता पिता का बातों को सुने, पत्नी के बातों को सुने, मगर उनके अंदर वो जो वैराग्य है और अनुराग है चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो बना रहा। माता पिता बहुत खुश, वो सोचने लगे मेरा बेटा सुधर गया, हमारा बात सुन रहा है, बिजनेस में लग गया है, कामकाज करने लग गया है, और पत्नी का बात सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा। मगर रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर वो वैराग्य बना रहा, वो पत्नी से, घर से, किसी चीज से आसक्त नहीं थे, बस वो दिखावा कर रहे थे कि मैं सब कुछ के आसक्त हूं, सब कर रहा हूं करके। कई दिन चला, मगर एक दिन ऐसा हुआ, आपको पता है मैं पहले बोला था कि इनका जो 20 लाख का इनकम में से 12 लाख डिपॉजिट कर रहे थे गवर्नमेंट में, एक्चुअली उनको 15 लाख जमा करना था, मगर वो 3 लाख को ठग रहे थे। ये बात पता लगा एक मुसलमान को, वो मुसलमान असलियत में उनका भागीदार था, वो पहले वो कर रहा था मगर अब ये करने लगे, तो स्वाभाविक उसके प्रति ईर्ष्या रहेगा ना। वो एक्चुअली वो सीन यह है, पहले राजाओं ने टैक्स कलेक्ट करते थे एक मीडिएटर के द्वारा, कलेक्ट अभी कलेक्टर होते हैं ना, सेम पोस्ट उस समय हुआ करता था, टैक्स कलेक्ट करना एक व्यक्ति, वो जमीन के मालिक, किसान, जमींदार, उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो लेके देंगे किसको, गवर्नमेंट को, फिर उनका परसेंटेज रहता था, ये परसेंटेज वो रखेंगे। पहले मुसलमान एग्जर्ट करता था, शासन मुसलमान का ही था, मगर इनके ऊपर विश्वास करके इन्होंने ज्यादा देंगे ऐसे करके होता है ना सेटलमेंट, कि नीलाम बुलाया जाता है कौन ज्यादा देंगे, है कि नहीं, तो वैसे इनको मिला इस काम। बाहर में मुसलमान को पता लगा कि ये 3 लाख तो ऐसे ही लोच रहे, उसने क्या क्या कंप्लेंट किया गवर्नमेंट को, सरकारी व्यक्ति आया इनको बंदी बनाने के लिए, मगर इनके बाप और बड़े पिताजी दोनों भाग गए थे घर से। पकड़ में आ गए कौन? बेचारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको लेके जेल में डाल दिया। मुसलमान उसको बहुत चिल्लाता था, बस उसको मारूंगा ऐसा,
इतना पैसा ठगा मेरे को दिया नहीं, मारेगा तेरे को।
मगर जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के चेहरा देखता था, फिर पता नहीं वो शांत हो जाता था। मारने आता था किसी से, बहुत गाली देता था, उनका चेहरा देख के वो ठंडा हो जाता था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी उपाय सोचे कैसे तो उसको बचना चाहिए इससे, उसके बाप तो आना है नहीं। फिर उन्होंने चालाकी करके बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया, बोले कि देखो आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता जो है आपकी उम्र के ही हैं, वो आपके भाई जैसा, आप लोग सब मिलजुल के रहते थे, अगर आप फ्रेंडशिप है तो भाई जैसा है, तो मेरे लिए तो आप पिता तुल्य हुए, मैं आपका बेटा जैसा हूं, तो एक बेटे को एक पिताजी कैसे मार सकता है, कैसे गाली दे सकता है, वो तो पालन करता है ना। इतना सुंदर तरीके से उनको समझाया को बेचारा दाढ़ी वाला मुसलमान रोने लग गया, ऐसे रोया कि दाढ़ी से आंसू गिरने लगा। फिर वो बोला कि फिर तू तेरे पिताजी को समझाना, तीन लाख रुपए ऐसे ही 8 लाख रुपए नोच रहे, हमको मेरे को भी थोड़ा मिलना चाहिए कि नहीं। तो बोले मैं बताता हूँ ना, बोले मैं बताऊंगा उनको, तो ठीक है मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। फिर वो ऊपर से बात करके उनको छोड़ दिया, बोलो कि तेरे बड़े पापा से मेरा मीटिंग करा और तेरे बड़े पापा जो भी डिसाइड करेंगे मैं राजी हूँ, मगर मेरे को भी थोड़ा मिलना चाहिए कि नहीं, इतना वो ठग खा रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मिलना चाहिए। बोले कि ठीक है मैं बात कराता हूँ। फिर वो सेटलमेंट कराए, इस प्रकार से इतना बड़ा केस जो है वो उसमें निकल गए। उनके अंदर ये वैराग्य तीव्र होते जा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही भागने लगे घर से, फिर पकड़ के लेके आए। उनके मम्मी ने बोला उनके पिताजी को, एक तो प्यार बहुत सुंदर सुंदर है, उन प्यारों को पढ़ने के लिए एकदम से अभी समय नहीं है, उनको कथा खत्म करना। तो उनके मम्मी को, मम्मी ने उनके पिताजी को बोला कि इस लड़का ऐसा नहीं सुनेगा, इसको एक रस्सी लाओ और एक कमरे के अंदर डाल के बांध डालो, बांधो उसको। उसके पिताजी बोल रहे हैं आपको मालूम है क्या, जिसके हृदय में एक बार गौरांग के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अरे जिसके लिए कुबेर जितना धन बंधन नहीं बन सका, अप्सरा जितना सुंदर पत्नी बंधन नहीं बन सकी, तो उसके लिए सामान्य रस्सी क्या बंधन बनेगा, नहीं हो सकता। एक बार किसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है कि स्वाभाविक तरीके से इस संसार के प्रति उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई वैराग्य का दिखावा करना चाहता है तो वो नहीं, वो एक दिन फ्लॉप जाएगा और फिर से सब कुछ में आसक्त हो जाएगा, फिर से कभी ना कभी वो वापस आ जाएगा इन चीजों में। तो कृष्ण के प्रति या खास करके गौरांग के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगर उसका प्रेम उनके हृदय में है तो उसको कौन सा रस्सी बांध पाएगा। वो अपने पत्नी को समझा रहे उनके पिताजी, क्योंकि वो भी प्रवचन सुने थे ना हरिदास से, भले ही रघुनाथ जैसा भक्त नहीं बन पाए, ऐसे चला सुनने में आया कि नित्यानंद प्रभु आए हैं पानी हाथी गांव में, कोलकाता के पास बंगाल में गांव का नाम है पानी हाथी, वो गांव में नित्यानंद प्रभु आए हैं। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, उनके भाई हैं, स्वयं बलराम है, उनका इच्छा हुआ वहां जाके नित्यानंद प्रभु का दर्शन करो। तब तक वो बिजनेस सब कुछ मस्त कर रहे थे, मगर उनके अंदर ओ वैराग्य तो बना हुआ। उन्होंने गए नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, साथ में कुछ लोग गए रहे, दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु पानियाटी गांव में एक वृक्ष, वट वृक्ष, बहुत बड़ा सा वट वृक्ष है, और वट वृक्ष के नीचे चबूतरा, चबूतरा समझते हैं, और वृक्ष के चारों तरफ सीमेंट का किया हुआ रहता है या किसी भी मिट्टी का, चबूतरा के ऊपर एक पैर के ऊपर पैर डाल के बैठे हुए एकदम भगवत प्रकाश, सारे पार्षद चारों तरफ उनके सेवा में लगे हुए, कोई पंखा चल रहे, कोई छाता पकड़े हुए हैं, कोई उनको तांबूल प्रदान कर रहे हैं, करोड़ों सूर्य की जैसा तेज उनके शरीर से निकल रहा है। नित्यानंद पुरुष स्वयं बलराम है, ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, नीलांबर, बलराम का एक नाम है नीलांबर, और भगवान का पीतांबर, पीत अंबर मतलब कपड़ा जिसके शरीर में है वो पीतांबर, और बलदेव जी का नाम है नीलांबर, ब्लू कलर के पहनते हैं, उनको पसंद है। रघुनाथ दास को स्वयं प्रणाम किए तो उनका एक पार्षद बोले कि हे भगवान रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद को देखे और मुस्कुराने लगे, चिल्ला के बोले चोर, कितना दिन से कहां छुपा हुआ था, नहीं आ रहा था मेरे पास, इधर आ मेरे पास आ, मैं तेरे को दंड दूंगा, इतना दिन से तुम मेरे से मिले नहीं, चोर कहीं के। नित्यानंद को वो हमेशा कौन सा भाव उसको कहते हैं, मजाक मस्ती के इसमें विलास के भाव में रहा करते थे, मगर उन्हें आए नहीं डर के रघुनाथ दास के साथ नजदीक नहीं आए, उनको भक्त लोग लेके आ गए। तो क्या किए मालूम है नित्यानंद को, अपना चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक में रख दिए। सोचो ऐसा हो सकता है, स्वयं नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वो जिनका अंश और अंश अंश का स्वरूप है परमात्मा, जिसका अंश का अंश का अंश है ये कारण दक्षाई गर्भ दक्षाई, जिसके अंश है स्वयं संकर्षण चतुर्भुज जिनसे निकलते हैं, जो स्वयं अनंत शेष है, जो इस संसार को इस पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक में लिए हुए हैं, ऐसे भगवान संकर्षण कारण दशाई गर्भोदशाई च पयोदिशाई शेषस्य जस्यांश सकलस्य नित्या नंदाक्षर रामं शरणं ममास्तु। वो संकर्षण है, वही गर्भोदशाई विष्णु है, उनके अंश के अंश, उनके अंश के अंश के अंश परमात्मा है। वैसे व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी को बुला के उनके चरण उनके सर के ऊपर अपना चरण को प्रदान कर रहा है, अपना चरण रख उनके सर के ऊपर, कितना कृपा है, वो कितना दयालु है, बुला बुला के कृपा दे रहे हैं। ये निताई चरण निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जैसे ही ये सुशीलता शीतलता रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला वो अत्यंत धन्य हो गए, उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया उनके ऊपर। कब से भाग रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा, नहीं कहा भाग रहे थे, नित्यानंद को बुला इधर आ इधर आ, चोर कहीं के उन्हें नित्यानंद को के पास नहीं आए, अब आए तुम्हें मैं दंड दूंगा, इतना दिन से क्यों नहीं आया मेरे पास चोर, वो हाथ जोड़ के खड़े क्या दंड देंगे नित्यानंद प्रभु, तुम्हारा दंड यह है कि मेरे जितने भी भक्त हैं ना सभी लोगों को दही और चूड़ा खिला, ये दंड है। रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरा अहोभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु के पार्षदों को वैष्णवों को मुझे सेवा करना, सेवा करने के लिए मौका मिला है, खिलाने के लिए मौका मिला है, वैष्णवों की सेवा में वो भी खिलाना, बहुत खुश हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी, एकदम प्रेमा वेश होकर वो तुरंत अरेंज करने लगे, दही चूड़ा अलग अलग लोगों को लगाए, स्वाभाविक है क्योंकि वो धनाढ्य परिवार के थे तो अरेंज करने में उनको कठिनाई नहीं हुआ है, तुरंत भले ही वो धनी है मगर उनका वो प्रेम देखिए भक्तों की सेवा करने का, और ये नित्यानंद प्रभु को भी देखो उनको क्या दंड दिए भक्तों की सेवा, कभी कभी भक्त लोग भी हमको दंड देते हैं, हम अपने मंदिर में रहते थे कभी कभी हम उठपटांग करते थे तो कमलोचन को ये लोग हमको दंड देते थे, तुम्हारे लिए पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट, तो तुमको टॉयलेट साफ करना पड़ेगा डेली एक महीने तक, तो कोई किसी किसी व्यक्ति सोचते हैं कि वो ये क्या डंड दे दिया मेरे को, मगर असली जब है अहो भाग्य है कि हमको सर्विस मिला। कभी कभी हमको सेवा हुआ, हमारे लिए दंड हुआ करता था हम भक्तों के लिए कि तुमको प्रतिदिन 2 महीने तक ये सर्विस करना पड़ेगा, पहले बैठ के नहीं खा सकते, पूरा सेवा करोगे फिर बाद में बैठ के खाओ। कभी कभी आश्रम तुमको साफ करना पड़ेगा। ये सब दंड जो है ना वो भक्ति को और पराणित करने के लिए। वैष्णवों का दंड दंड नहीं होता, वो कृपा होता है। हर एक वैष्णव की दंड देखी है, नारद मुनि नल और कुबे नल कुबर और मणिग्रीव वृक्ष बन जा, नंगे बदमाश पेड़ बन जा, पेड़ बन गया। मगर कैसे पेड़ बने? वो नंद बाबा के आंगन में, विचार करो नंद बाबा के आंगन में, जिसके आंगन में स्वयं कृष्ण खेलते हैं रेंगते हैं, बिचारी देवकी देवकी माता को भी ये प्राप्त नहीं हुआ उनकी बाल लीलाओं को दर्शन करने के लिए, मगर नल कुंवर मणिग्रीव जिन्होंने नंग धड़ंग घूम रहे थे स्त्रियों के साथ, उनको ये कृपा मिला है कि वो बाल लीलाओं को दर्शन कर सके। ये वैष्णव की कृपा है, ये उनकी दंड की महत्ता है। हर एक वैष्णव कहीं पे भी आप देखेंगे बाहर से दिखाई पड़ रहा है क्रुद्ध है अभिशाप दे रहे हैं, मगर उनका अंदर का भाव क्या रहता है कि कैसे ये व्यक्ति कृष्ण के प्रति और प्रेम बढ़ जाए। तुरंत नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या सेवा दिया कि तुम वैष्णवों की सेवा करो, दही चूड़ा खिलाओ उनको, करुणादास तुरंत लग गए अरेंज करने के लिए। दो प्रकार की चूड़ा लाए, एक अरुआ चूड़ा होता है और एक चूड़ा होता है, धान को उबाल कर एक बार चूड़ा बनाया जाता है, ऐसे ही चूड़ा बनाया जाता है, दो प्रकार के चूड़ा। सब चूड़ा लेके आए, उसमें दही लेके आए, दूध लेके आए, हाँ गाय का मस्त, और केला लेके आए, ये लंबे लंबे बड़े बड़े पीले पीले केला नहीं, ग्रीन ग्रीन, हाँ वो सुगंधित केला, हाँ वो कुछ तो है, केला का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, वो सब केला विदेश में भेजते हैं भारत से, और विदेश से केला हमारे यहाँ मंगाते हैं इंजेक्शन डला हुआ, तो सुगंधित केले और इलायची केला कर्पूर कई सारे चीजों को मंगाए, और उसको दो प्रकार के चीज बनाए उसमें, एक है दूध के साथ चूड़ा और एक है दही के साथ चूड़ा, है ना, और उसमें केला भी डाला गया सुंदर मस्त सुगंधित केले को डालकर, हाँ और इलायची का पाउडर डालकर कर्पूर डालकर उसको सुगंधित केला प्रस्तुत किया गया, और एक एकदम दूध को उबाल उबाल के बहुत होने के बाद उसमें चूड़ा डाला गया, वो एक प्रकार का आइटम बना। दो प्रकार का आइटम, एक दूध केला दूध चूड़ा और एक है दही चूड़ा, दो आइटम बनाया, बहुत सारा बनाया, और ये बात फैल गया कि अरे रघुनाथ दास फीस खिला रहा है सबको। तब तो जितने लोग पार्षद थे सब गांव वाले सब ब्राह्मण गांव के बाजू बाजू वाले सभी लोगों ने आकर उन्होंने वहां पर पहुंच गए, कहां पे ये फीस खाने के लिए, हमारे विराजन में ऐसा होता है संडे लॉ फीस होता है दोपहर को, तो संडे लॉ फीस में क्या होता है कि 100 लोग बैठते हैं 150 लोग बैठते हैं, खाते समय 300-400 लोग रहते हैं, तो सब भक्त लोगों ने डिसाइड किया हम ऐसा करेंगे भाई, वो कूपन सिस्टम है ना, कथा में आने से पहले वो कूपन इश्यू किया जाएगा, कूपन लो कथा सुनो फिर आप जाके पैसा खा सकते हैं, और कूपन का टाइम नहीं, ये टाइम से ये टाइम पे तुमको कूपन मिलेगा। तो फर्स्ट डे ठीक है, फिर दूसरे दिन से दिमाग लगाने लगे लोग, अभी क्या क्योंकि वो रेसिडेंट हो पीछे पेंकर पड़ा करके हैं, वो सब लोग ऐसे रहते हैं जो भी में वो सब आते हैं सब मस्त प्रसाद खाने के लिए, अच्छा है और कथा भी सुनना चाहिए ना, प्रसाद खाना तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी हृदय को परिवर्तन करता है, फिर भी मैनेजमेंट इस प्रकार से सब किया, हम तो यहाँ पे जाते हैं और खिचड़ी खिलाएंगे दो रात्रि के बाद और लोग आए क्योंकि अभी आना चाहिए वहां पे बहुत हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया ये प्लानिंग किए, तो लोग भी प्लानिंग किए बराबर टाइम पे आके कूपन लेके जेब में डाल के घर में फीस के डर पे मस्त आके सीधा लाइव प्रसाद हम आपके सामने उधर खड़े, अभी वो समस्या चालू है। तो फीस का अनाउंसमेंट हुआ, इसका में दो मंत्र है, बुलाने का भगाने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब ठीक है बाद में आएंगे, अगर महाप्रसादे गोविंदे तो सब आ जाएंगे, चालू हो गया एक बार ऐसे हुआ, संडे लॉ फिश का क्लास मुझे दे दिए, लॉ फिश मतलब मैं वो एकदम सब लोग आएंगे जिधर जिधर से सब एकदम पैक भरा हुआ रहे, बैठ के सब हो गया मंगलाचरण, तो मैंने चालू किया किया ओ महाप्रसादे गोविंदे, तो सब लोग महाप्रसादे गोविंदे बोले, मैं रुक गया, सब लोग आश्चर्य होकर देखे क्या हो रहा है। मैं बोला कि उस बाहर भी घूम रहे ना उनको बुलाना चाहता हूँ मैं। इसलिए महाप्रसादे गोविंदे शुरू में ही बोल दिया। तो कुछ लोग सबने अंदर आगे दौड़ के क्या हो रहा है, शुरू में क्या महाप्रसाद गोविंद हो गया आज। तो सब आ गए, कितने कितने लोग आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी बोले अरे बाप रे कितने लोग आ रहे, और चूड़ा मंगाए, उनके गांव के दुकानों में चूड़ा खत्म हो गया, दही भी खत्म हो गया, तो दूसरे दूसरे गांव से मंगाए, बड़े बड़े मटके मंगाए और उसमें डाले और उसको बनाने लगे, ब्राह्मण लोगों ने लग गए बनाने में, अभी दही चूड़ा बन गए, सब लोगों को मिट्टी का कटोरी मिला, अभी आप लोगों को प्लास्टिक का दोना देंगे हम। मिट्टी का कटोरी मिला, मिट्टी का कटोरी में दही, दो दो कटोरी सबको बड़ा बड़ा, एक में दही चूड़ा और एक में दूध और चूड़ा, वो मिल गया, सब लोगों ने लिए। नित्यानंद प्रभु सात आठ बड़े बड़े ड्रम लेके बैठ गए खुद, और उनके चारों तरफ चबूतरे में सीनियर डिवोटीज, मतलब जो नित्यानंद प्रभु के अंतर आश्रम एकदम से नजदीकी थे, वो सब चबूतरे में बैठे हुए हैं, और बाकी सब इधर उधर खड़े हैं दो दो हाथ में लेकर, सबको हाथ में परोस दिया गया, और इतने लोग आ गए फैल गया। और एक उड़िया में कहावत है तुंडवाई दो सहस्र कोशक, और एक बार एक एक व्यक्ति के किसी को तो सीक्रेट रखना, किसी को जाकर बोलना मालूम नहीं क्या बोलना किसी को। हाँ सही बात है, और दूसरे को मालूम नहीं क्या, उधर किसी को बोलना मत, वो दूसरे को जाकर बोलेगा किसी को बोलना मत, किसी को बोलना बहुत सब जगह रहेगा, मगर पूरा फैल जाएगा ये चीज, है स्पीकर से की बहुत काम करेगा, स्पीकर जो ना मैक्सिमम कुछ 200 लोग ऐसे ऊपर, मगर वही ये चालू कर दिया अगर एक जन के कान से, वो बहुत फैल जाता है एकदम से, गांव में जाता है शहर में तो एकदम, तो ये फैल गया तो लोग एकदम से आजू बाजू वाले गाँव वाले सब भर गए, जगह ही नहीं हुआ वहां पर, वो जो एरिया था वो पानी आदि का जो वो गंगा नदी का किनारा था, तो सभी लोगों ने दो हाथ में कटोरी लेके है, देखो अभी जगह नहीं क्या करेंगे, चलो चलो नदी के किनारे बैठो, कम से कम नदी के किनारे बैठ गए खड़े होकर, और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, अभी कहाँ जाएंगे, कुछ लोग देखे अरे ना चबूतरे में जगह नहीं, आजू बाजू में जगह नहीं, और गंगा नदी के तट में जगह नहीं, तो चलो कम से कम पानी में थोड़ा उतर जाए, थोड़ा थोड़ा पानी में उतरे, अरे इतने पानी में उतर गए, और भी लोग आए तो और पानी में उतरे, और पानी में उतरे, इतना इतना पानी दो हाथ में, और जो लोग यहां तक उतर के हाथ में कैसे पकड़ेंगे उसको पानी में रख दिए। आश्चर्य की बात यह था कि वो दो मटके में, दो दो छोटे छोटे मटके में दही और दूध की चूड़ा जो भरा हुआ है उसको रखने से डूब जाना चाहिए, मगर बहुत आश्चर्य की बात यह है कि वो दोनों उसको पानी में रख दिए, वो ऐसे रह गए, वो डूबा नहीं ना तो बह के गया, वो उधर ही रहा। अभी खाना चालू करना है, नित्यानंद प्रभु देते चैतन्य महाप्रभु नहीं, भोग लगा था सब कुछ हो गया था, अभी चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, कहां पर थे जगन्नाथपुरी, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे 5 मिनट, आना पड़ेगा, हो गया दही चूड़ा हाथ में आ गया तो फिर हो गया, हो गया 5 मिनट। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाए हृदय में, तो महाप्रभु आ गए मस्त, मगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वो बोले कि फिर कैसे पता लगा, क्योंकि कदंब फूल, कदंब फूल का माला महाप्रभु पहना करते, कदंब फूल वो माला का सुगंध चारों तरफ फैल गया, तो सब लोग बोले अरे महाप्रभु की माला का फूल का सुगंध, ठीक है। फिर नित्यानंद प्रभु क्या किए, सब लोग दही चूड़ा खाना चालू नहीं कर दिए थे, महाप्रभु को लेके नाचते नाचते चारों तरफ घूम रहे, सब लोग को समझ में नहीं आ रहा घूम क्यों रहा है, मगर वो कर क्या रहे थे मालूम है, सबके प्याले में से दही और चूड़ा दूध और चूड़ा निकाल निकाल के महाप्रभु के मुंह में दे रहे थे, और महाप्रभु मस्त नाच नाच के खा रहे थे, और महाप्रभु भी निकाल के इनको पिला रहे थे, ऑलरेडी वो भक्त खा चुका है, देखो भगवान को मोह लग चुका है फिर बाद में भक्त भी खा रहा है, उसमें से निकाल के महाप्रभु को खिला रहे, और उसमें महाप्रभु खुश हो रहे हैं और वो नाच रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु निकाल के खिला रहे और दोनों नाच रहे, मगर बात कुछ ऐसे गिने चुने ही लोग थे जिन लोगों ने दोनों को देख रहे थे, ये दोनों व्यक्ति यहां पे हैं, मगर सब लोगों को नहीं दिख रहा था, सब लोगों को एहसास हो रहा था कि महाप्रभु का उपस्थिति का अनुभव हो रहा है, मगर देख नहीं पा रहे थे। कुछ ही लोग है जो नित्यानंद प्रभु के एकदम से निकट पास थे, वो लोग देख पा रहे थे। तो ऐसे कुछ देर चला, तब नित्यानंद प्रभु चिल्लाने लगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो सब लोगों ने जोर जोर से चिल्ला के ये दही और चूड़ा को वो खाने लगे। फिर बाद में वहां पे एक भक्त आए, अपने घर से लाए थे खाना, बोले कि आप इधर दही चूड़ा में मग्न, हमारे घर में कैसे खाएंगे। तो नित्यानंद बोला, आप चिंता मत करो, अभी मेरे को इधर खाने दो, फिर बाद में शाम को आपके घर में। क्या है, मेरे को इधर मजा आता है, हम वैसे ग्वाले हैं ना बाहर जंगल में, और हमारे साथ कुछ बच्चे भी रहते ही हैं, नदी के किनारे घूम घूम के ऐसे खाने में मजा आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे मजा लेने दो। वो कौन से मूल में बोल रहे थे, बलराम के मूल में है कि नहीं, यहाँ मजा आ रहा है, और रात को जाएगा आपके घर में खाने के लिए, है कि नहीं। राघव पंडित वो बुला आए थे बुलाने के लिए, अपने मेरे घर में बना। फिर उन्होंने बहुत सारा जो घी से बनाया हुआ आइटम उसको सब लेके आए, वो सब भी उधर खाए। सब भक्त लोग बहुत प्रसन्नता के साथ ये प्रसाद खाए, दही और चूड़ा, सब लोग खुश हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी का गुणगान किए, रघुनाथ दास को देना एकदम मेहनत किए, कुछ 12 लोग लगे हुए थे सर्व करने में। तो ये हुआ। फिर एंड में नित्यानंद प्रभु का बचा हुआ चीज राघव पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए, चूटा महापुषा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसको पाए, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए, रात को राघव पंडित के घर में प्रसाद नित्यानंद पाए। बाकी वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया, वहां गए थे। फिर नित्यानंद प्रभु बोले कि अभी तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हो, अभी जाओ, जगन्नाथपुरी में है वो। फिर रघुनाथ दास आगे की कथा है, रघुनाथ दास गोस्वामी घर कैसे छोड़ेंगे, फिर वहां जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोल नित्यानंद को, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो विषय का जो घर है वो सबका आपने छोड़ के आगे अच्छा किया। फिर बहुत सारा वैराग्य की कथाएं हैं उनके, रघुनाथ दास गोस्वामी की। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का फेंका हुआ राइस एक दिन दूसरे दिन फिर भी बच जाता है ना, वो सड़ जाता है ना, उसको कहीं दूर लेके फेंक देते हैं राइस को पूरी में। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करेंगे, उधर जाके वो राइस को लेके धो के उसमें से थोड़ा जो निकलेगा उसको खा के जीते थे। वैराग्य किसी को मानते भी नहीं थे, ऐसे ऐसे वैराग्य थे रघुनाथ दास के साथ। तो सब कथा है, फिर से कभी रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव फिर भाव आएगा तो उनकी वैराग्य की कथा सुनेंगे। मगर इसका थीम यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पास वो आए थे, मगर उन्होंने मना कर दिया, वापस भेज दिया था घर में। और ये जो परिवार के प्रति का आसक्ति, संपत्ति के प्रति का आसक्ति, हालांकि नहीं था रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये नहीं थे, ये अगर तुमको क्लियर हुआ कि नहीं, सर्टिफाइड कौन करेगा भाई, वो उनका इशू नहीं है, मेरा काम नहीं है इनके अनर्थ खत्म हुआ कि नहीं। और सच में हमारे अंदर की जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसके अलावा और भी कई अनर्थ है, अनर्थ समझते हैं, और मतलब नहीं, अर्थ मतलब मीनिंग, मीनिंगलेस चीजें जो हमारे भक्ति के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, उसको अनर्थ कहते हैं। और ये अनर्थ कई देर तक टिके हुए रहते हैं हमारे अंदर। आदो श्रद्धा, पहले हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है, जैसे ही श्रद्धा होता है हम किसी ना किसी व्यक्ति से भक्त से मिलते हैं, तथा साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया शुरू होता है, हरे कृष्ण वाले से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई हरे कृष्ण चालू कर दे जय श्री कृष्ण मंत्र बोल के, है कि नहीं। फिर तुम आ जाना गीता क्लास, साधु संघ से भजन क्रिया कार्य, जपा करना, मंदिर आना, भागवत सुनना, ये सब चालू हो जाता है। यहां तक ठीक है, हम लोग पहुंच जाते हैं मस्त, श्रद्धा भी है हमारे अंदर, साधु भी मिल गए, साधु मिलने से भजन क्रिया भी चालू हो गया, रोज भी फोन करके डांटते हैं, बुला के पूछते हैं कितना माला जप किया। ये भजन क्रिया के बाद एक स्तर है अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि श्रद्धा भाव प्रेम, ये सब बात है। अनर्थ निवृत्ति ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट, उससे बचवाना, उससे निकलना। कई सालों तक भजन करने से भी, सन्यासी बन जाने पर भी, कितने सालों से, 20 सालों से भक्ति करने पर भी अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार नहीं कर पाते। पता नहीं लगता है, ये शुरू शुरू में कुछ चीजें पता लगता है कि ये चीजें मेरे अंदर नहीं होना चाहिए था हमको, धीरे धीरे से सटल सटल वो रहता है अंदर सूक्ष्म रूप से। कभी अनर्थम के ऊपर चर्चा करके तो बताएंगे क्या क्या है वो चीजें। तो ये अनर्थ निवृत्ति वहां पे इनका एक किताब है, किताब का नाम है माधुर्य कादंबिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, उसमें वो लिखते हैं अनर्थ निवृत्ति के बारे में, अनर्थों के बारे में। तो उनमें उसने बताते हैं कि व्यक्ति कृष्ण की कृपा नहीं होगा अनर्थों को नाश करने के लिए, और कृष्ण करेंगे ही नहीं तुम्हारा अनर्थों का नाश, मतलब मेरा मैटर नहीं, मेरे विषय ही नहीं है, ध्यान दीजिए वो गुरु का काम है। गुरु देखते हैं तुम्हारा ये गलती है क्यों ऐसा कर रहे हो, वो बोल सकते हैं, कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण उस मामले में हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं, गुरु का काम है। तो ये नित्यानंद प्रभु, ये जो परिवार के प्रति का आसक्ति, वो वित्त मतलब पैसा, पैसों के प्रति का जो आसक्ति, वो इन चीजों को रघुनाथ दास को समझ कर था नहीं, फिर भी वो सर्टिफाइड की कि है नहीं करके, फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए वो ये मूल थीम है। तो हमें कैसे नित्यानंद प्रभु को कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, वैष्णव सेवा, उसमें ये नहीं बताया जितने जितने लाल कपड़े दिख रहे हैं ना उसको ही दही चूड़ा खिलाना, जितने जितने मेरे सीनियर भक्त लोग हैं ना उन्हीं लोगों को घर में बुलाना, सभी वैष्णवों को हमको ये नहीं देखना है कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या किया। तो हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना है, वैष्णवों को सेवा करना है, वैष्णव की सेवा से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, और नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होने से ही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे किए कि रघुनाथ दास को संवाद तो ये मूल विषय है आज। ये दही चूड़ा उत्सव का उद्देश्य यही है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना, और नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर हो जाता है तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा, मगर इन सबसे पहले वैष्णव की सेवा। तो जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और सुनने के बाद श्रद्धा के साथ दही और चूड़ा खाता है तब पर भी नित्यानंद प्रभु का कृपा उनको मिलता है। इसीलिए चलिए हम लोग अभी दही और चूड़ा को खाएंगे, नहीं तो खाते खाते जाएंगे। हरे कृष्णा। दही चूड़ा महोत्सव की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की।